ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद भारत में ऊर्जा सुरक्षा का कोई संकट नहीं है। शहीदी दिवस पर आज रायपुर सहित अनेक स्थानों पर निकाली गई पदयात्रा। बालोद जिले में बीती रात हुई सड़क दुर्घटना में 2 महिलाओं की मौत, 18 लोग घायल। और मौसम विभाग के अनुसार 26 मार्च से दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्की वर्षा का दौर शुरू हो सकता है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद भारत में ऊर्जा सुरक्षा का कोई संकट नहीं है। आज लोकसभा में पश्चिम एशिया संघर्ष पर भारत का रुख स्पष्ट करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने कहा कि भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक महत्वपूर्ण पेट्रोलियम भंडार है। श्री मोदी ने सदन को सूचित किया कि 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक अतिरिक्त भंडारण की व्यवस्था पर भी काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्ष में देश की शोधन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विभिन्न देशों के आपूर्तिकर्ताओं के साथ निरंतर संपर्क में है और जहां भी संभव हो स्रोतों से तेल और गैस की आपूर्ति जारी रखने का प्रयास किया जा रहा है।
हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो, देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। हम सभी जानते हैं देश अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है, साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस गंभीर स्थिति में देश और विदेश में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। श्री मोदी ने कहा कि संघर्ष की शुरुआत से अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित रूप से देश लौट चुके हैं। विश्व टीबी दिवस के मौके पर कल उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 100 दिन के टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री नड्डा टीबी मुक्त भारत ऐप और टीबी मुक्त शहरी वार्ड पहल का भी शुभारंभ करेंगे। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य टीबी के मामलों का तेजी से पता लगाना, उपचार और टीबी सेवाओं में सुधार करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि प्रयास विश्व टीबी दिवस 2026 के विषय हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं के अनुरूप है। राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्हें वर्ष 1931 में आज ही के दिन लाहौर की केंद्रीय जेल में फांसी की सजा दी गई थी। माय भारत के राज्य निदेशक अर्पित तिवारी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि शहीद दिवस पर माय भारत की ओर से मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी थीम पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अन्य स्थानों पर पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में माय भारत के युवा साथी, स्वयंसेवक और विभिन्न समाज और संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
आज शहीदी दिवस पे एक पदयात्रा का आयोजन किया गया था जो मरीन ड्राइव तेली बांधा तालाब से होते हुए भगत सिंह चौक तक थी और वहां पे भगत सिंह जी को माल्यार्पण करके उनका सम्मान भी किया गया था युवाओं के द्वारा। और इस शहीदी दिवस में भगत सिंह और हमारे राजगुरु सुखदेव जी को सम्मानित करते हुए उनके बलिदान को याद भी किया था और प्रेरणा भी ली थी।
इस पदयात्रा में प्रमुख रूप से राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, विधायक सुनील सोनी और रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे ने भी अपनी सहभागिता दी। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत इस साल प्रदेश के करीब 5 लाख भूमिहीन हितग्राहियों के खाते में सीधे 10,000 रूपये की धनराशि प्रत्येक हितग्राही के मान से दी जाएगी। 25 मार्च को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बलौदाबाजार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये राशि अंतरित करेंगे। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से लगभग 496 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इस सूची में 22,000 से ज्यादा बैगा और गुनिया परिवार भी शामिल है। ये योजना उन ग्रामीण परिवारों के लिए संचालित की गई है जिनकी आय का मुख्य स्रोत मजदूरी है। बिलासपुर में आयोजित श्रमिक सम्मेलन में हितग्राहियों के खाते में सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत 1,36,00,000 रूपये से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक अमर अग्रवाल ने हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत प्रतीकात्मक चेक और ई रिक्शा की चाबियां वितरित की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बालोद जिले के मंगचुआ थाना क्षेत्र के भवरमरा गांव के पास बीती रात एक वाहन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से इसमें सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई, वहीं 18 अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 12 की हालत गंभीर बताई जाती है। घायलों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। मिली जानकारी के मुताबिक एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पद्दे टोला गांव के 20 ग्रामीण लौट रहे थे, इसी बीच उनका वाहन टोला मोड़ के पास पलट गया। विश्व वानिकी दिवस के मौके पर राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यशाला में वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश के लोगों का जीवन प्रकृति पर आधारित है और वनों के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में TERI नई दिल्ली द्वारा वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्यांकन, जलवायु परिवर्तन और पारंपरिक ज्ञान से संबंधित पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। कार्यशाला में राष्ट्रीय अनुकूलन कोष परियोजनाओं से जुड़े हितग्राहियों ने अपने अनुभव साझा किए। रायगढ़ जिले के लैलुंगा क्षेत्र के घटगांव में भी अफीम की खेती पकड़ी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटगांव में सब्जियों की बाड़ी के बीच अफीम उगाई जा रही थी। 17 दिनों के भीतर प्रदेश में अफीम की अवैध रूप से खेती करने का यह 5वां मामला सामने आया है। धमतरी जिले के गंगरेल बांध में पहली बार नौकायान उत्सव के तहत कल महानदी रिवर बोट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। मचान हार्ट पॉइंट से गंगरेल ब्लू एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉइंट तक 1000 मीटर की चुनौतीपूर्ण दूरी में आयोजित इस रोमांचक प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अद्भुत गति, संतुलन और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में धमतरी, कांकेर और बालोद जिले की कुल 52 टीमों ने भाग लिया। चैत्र नवरात्र की आज पंचमी तिथि है। इस मौके पर प्रदेश के सभी शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में विशेष धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। वहीं मां दुर्गा के दर्शन के लिए धार्मिक स्थलों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। प्रदेश की सभी जेलों में भी नवरात्रि पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बंदियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, जिससे वे धार्मिक आस्था के अनुरूप उपवास और पूजा अर्चना कर सकें। जेलों में करीब 2,400 कैदी चैत्र नवरात्र का उपवास कर रहे हैं, जिनमें 2,125 पुरुष और 272 महिला कैदी शामिल हैं। इन व्रतियों के लिए जेल प्रशासन की ओर से फलाहार, स्वच्छ पेयजल, पूजा सामग्री और आरती पूजन की व्यवस्था की गई है। नारायणपुर जिले के कुमनार थाना क्षेत्र में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP की 29वीं बटालियन और जिला पुलिस नारायणपुर की ओर से पुलिस जनसंवाद तथा जन कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय ग्रामीणों की निशुल्क स्वास्थ्य जांच और उपचार के लिए शिविर लगाया गया। कार्यक्रम स्थल पर गांव के स्कूली बच्चों को बैग, कॉपी, स्टेशनरी सहित अन्य शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। और अब पेश है मौसम का हाल। एक पश्चिमी विक्षोभ ऊपरी हवा के चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण के रूप में जम्मू कश्मीर और उसके आसपास स्थित है। इसके साथ मध्य क्षोभ मंडल में एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके असर से राज्य के मौसम के कल शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं 26 मार्च से दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्की वर्षा का दौर शुरू हो सकता है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। यात्रियों से शिकायत मिलने के बाद रेलवे सुरक्षा बल दुर्ग की टीम ने बिलासपुर चेन्नई एक्सप्रेस से 12 किन्नरों को गिरफ्तार किया है। भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये आवेदन आगामी 1 अप्रैल तक ज्वाइंट इंडियन आर्मी वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। एकीकृत बाल विकास परियोजना के तहत गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र अहिरानपारा अमारू में सहायिका के एक पद पर भर्ती के लिए आगामी 6 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और दंतेवाड़ा पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में झारखंड के कोडरमा से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद भारत में ऊर्जा सुरक्षा का कोई संकट नहीं है। शहीदी दिवस पर आज रायपुर सहित अनेक स्थानों पर निकाली गई पदयात्रा। बालोद जिले में बीती रात हुई सड़क दुर्घटना में 2 महिलाओं की मौत, 18 लोग घायल। और मौसम विभाग के अनुसार 26 मार्च से दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्की वर्षा का दौर शुरू हो सकता है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।